आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। शनिवार रात चक्रवात फीना के नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी से गुजरने के बाद डार्विन में लगभग 20,000 घर और व्यवसाय अब भी बिजली से वंचित हैं। मुख्यमंत्री लिया फिनोकियारो का कहना है कि कर्मचारी बिजली बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। चक्रवात फीना 1974 में आए विनाशकारी चक्रवात ट्रेसी के बाद डार्विन के इतना करीब पहुंचने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। हालांकि आज सुबह तक किसी बड़े नुकसान या गंभीर चोट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री ने सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि हालांकि चेतावनियां कम कर दी गई हैं, फिर भी निवासी घरों या इमरजेंसी शेल्टर में ही रहें और केवल जरूरी कारणों से ही बाहर निकलें। दूसरी ओर देश के पर्यावरण कानूनों में इस सप्ताह बड़े बदलाव लाने की तैयारी के बीच फेडरल सरकार ने नेटिव फॉरेस्ट लॉगिंग पर सख्त नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। कई राज्यों में प्राकृतिक जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में ये प्रथा अब भी जारी है और वर्तमान फेडरल पर्यावरण कानूनों के तहत नियमन से छूट भी प्राप्त है। पर्यावरण मंत्री मरे वॉट का कहना है कि सरकार अपने विधेयक में ऐसे संशोधन ला रही है जिससे ये कानूनी लूपहोल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ग्रीन्स पार्टी की पर्यावरण प्रवक्ता सारा हैंसन यंग ने इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन ABC के इनसाइडर कार्यक्रम में कहा कि वे इस प्रस्ताव पर और विस्तृत जानकारी चाहती हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स में किफायती आवास बढ़ाने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने प्री फैब्रिकेटेड और मॉड्यूलर घरों के निर्माण के लिए एक मानकीकृत एकल अनुमोदन प्रक्रिया की घोषणा की है। राज्य की आवास मंत्री रोज जैक्सन का कहना है कि पिछले हफ्ते घोषित किया गया ये योजना सुधार नई इमारतों की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि नया कानून गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करेगा और यह कि निर्माण समय पर आगे बढ़े। मिंस सरकार अब तक $5.1 बिलियन सामाजिक और किफायती आवास में निवेश कर चुकी है। दूसरी ओर ACT पुलिस ने उस अबोरिजिनल किशोर से माफी मांगी है जिसे गलती से कैनबरा में एक बस से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया था। चीफ पुलिस ऑफिसर स्कॉट ली ने कहा कि वे मानते हैं कि 17 वर्षीय लड़के के लिए ये बेहद तनावपूर्ण अनुभव रहा होगा। ये किशोर 12 नवंबर को अपने परिवार से मिलने जा रहा था जब पुलिस ने उसकी बस को रोका। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने नस्लीय भेदभाव करते हुए किशोर को बस से उतारा, हथियार ताने, उसे हथकड़ी लगाई और फिर मोबाइल फोन पर तस्वीरें देखकर समझा कि उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि चीफ पुलिस ऑफिसर का कहना है कि अधिकारियों ने कोई गलती नहीं की क्योंकि वे वार्डन के एक शॉपिंग सेंटर में चाकू लिए व्यक्ति की सूचना पर कार्यवाही कर रहे थे। खेल जगत में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ स्टेडियम में खेले गए एशेज ओपनर में सिर्फ 2 दिनों में 8 विकेट से एक शानदार जीत दर्ज की है। मैच कुल 30 घंटे ही चला। ये जीत ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त देती है। ये मुकाबला 1932 के बाद से ऑस्ट्रेलिया जमीन पर खेला गया सबसे छोटा टेस्ट मैच भी बन गया है। हालांकि इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का कहना है कि भारी हार के बावजूद भी उनकी टीम अपनी रणनीति या ब्लूप्रिंट में कोई बदलाव नहीं करेगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन और यूरोप के प्रतिनिधि आज जिनेवा में बैठक करेंगे जहां यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन वार्ताओं के लिए जिनेवा जाने की तैयारी की है। रूस को यह प्रस्ताव सौंपने की गुरुवार की समय सीमा तय की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर का कहना है कि अमेरिका द्वारा पेश किए गए 28 बिंदुओं के प्रस्ताव पर सभी पक्षों की सहमति के लिए अभी और काम करने की आवश्यकता है। इससे पहले यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन ने ट्रंप प्रशासन की इस योजना पर नाराजगी जताई थी क्योंकि ये मसौदा उनके शामिल किए बिना ही तैयार कर लिया गया था। और अंत में खबरें भारत से। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ACITI यानी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की है। इसका ऐलान जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और कैनेडियाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक में हुआ। इस नई साझेदारी का मुख्य लक्ष्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाना, खासकर स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और मजबूत सप्लाई चेन के क्षेत्र में काम करना होगा। तीनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उसके व्यापक उपयोग पर भी मिलकर काम करेंगे। ACITI का उद्देश्य एक सुरक्षित, टिकाऊ और लचीली तकनीकी इकोसिस्टम बनाना है जो नेट जीरो के साझा लक्ष्यों और वैश्विक सप्लाई चेन के विविधीकरण को समर्थन दे सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तीनों देशों के अधिकारी 2026 की पहली तिमाही में फिर मिलेंगे। इसी के साथ 23 नवंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।